जप करने से ओज बढ़ता है, तेज आभा। आप थोड़े दिन मौन रहिए, थोड़े दिन जप करिए, एकांत में रहिए, आपको लगेगा कि बहुत कुछ है। कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्रवी यो गृह्णाति नराधम मन्वंतर सहस्त्रेषु निष्कृति न जायते। गुरु के निकट से दीक्षित न होकर जो व्यक्ति ग्रंथ आदि को देखकर मनमाना मंत्र ग्रहण करता है, उस नराधम को शास्त्र मन्वंतर में भी निष्कृति लाभ अर्थात सदगति लाभ नहीं होता। ये नवरत्नेश्वर ग्रंथ का श्लोक है। नवरत्नेश्वर शास्त्र का ये श्लोक है। फिर से मैं बोलता हूं, कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्रवै, कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्रवै यो गृह्णाति नराधमः मन्वंतर सहस्त्रेषु निष्कृति ते नैव जायते। गुरु के निकट से दीक्षित न होकर जो व्यक्ति ग्रंथ आदि को देखकर मंत्र ग्रहण करता है, उस नराधम को शास्त्र मन्वंतर में भी निष्कृति लाभ नहीं होता है। ब्राह्मण कुल में तो जन्मे, लेकिन किताबों से पढ़ के मंत्र और कर्मकांड कराने लगे, किताबों से पढ़कर मंत्र रटने लगे, बोलने लगे, तो वे ही बेचारे स्वीकार करते हैं कि लालजी महाराज तुम्हारा कसूर नहीं है, हमारे में तेज नहीं, हम दान का खा खा के निस्तेज हो गए, और जिन्होंने ज्यादा लूटा वही हमारे पूर्वज घोड़े बने हैं भाई। अब हमें तुमने शू कही कि हमें ब्राह्मण छे, ब्राह्मण छे, जन्म थी ब्राह्मण छे पर कर्म थी नहीं। तो गुरु के मंत्र में जो चेतना होती है, गुरु के मंत्र में जो प्रभाव होता है, अपनी सुषुप्त ऊर्जा आभा ऊर्ध्वगामी होती है, उससे एक आध्यात्मिक सौम्यता आती है, आध्यात्मिक आभा मंडल बनता है। दशरथ राजा को यज्ञ करवाना था, पुत्रेष्टि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाना था, और वशिष्ठ महाराज कर्मकांडी थे, यज्ञ में निपुण थे वशिष्ठ महाराज। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं अभी भावनगर के कार्यक्रम में था, तो वहां एक सन्यासी रहते हैं, अच्छे हैं बेचारे, दर्शन करने को आए, कुछ लोग उनके पास सत्संग के लिए जाते हैं। वो महाराज हमारा फोटो रखते हैं, हमारे किताब पढ़कर सत्संग करते हैं, अपना भी वेदांत ग्रंथ पर भी सत्संग करते हैं। तो अपने साधकों को तो हमने सत्संग की महिमा बताई है, तो कोई भी सात्विक है वेदांत शास्त्र योग वशिष्ठ के अनुसार सत्संग करता है, तो अपने साधक कहीं चले जाते हैं, तो अपने साधक भी जाते थे। फिर उन साधकों में से एक दो साधकों ने पूछा कि बा मेरे से पूछा कि वेदांत का जो सत्संग करते हैं, वे बोलते हैं कि जिसको आत्मविचार का रास्ता मिल गया, उनको फिर कर्मकांड करने की माला बाला घुमाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई वो विचार सागर में ऐसा लिखा है, लेकिन वो कौन से शिष्य को देखकर गुरु ने कहा और किस निमित्त लिखा है, ये उन्होंने नहीं वर्णन किया। एक देशी एक किताब पढ़कर आप कोई धारणा बना लेंगे तो काम नहीं चलेगा। विचार सागर में लिखा है निश्चल दास जी महाराज, अच्छी बात, लेकिन योग वशिष्ठ पढ़कर देखो कि संध्या हुई और वशिष्ठ जी ने कहा भी संध्या वंदन का समय हुआ, बाकी का फिर कल कहेंगे। दोपहर की संध्या के समय रामचंद्र जी संध्या करते हैं, शाम की संध्या के समय रामचंद्र जी वशिष्ठ जी संध्या करते हैं, संध्या में तो प्राणायाम और जप कर्म कांडी तो है, लेकिन मनमाना ग्रंथ पढ़ रहे हैं और मन गए कुछ तो फिर बोलते इसमें लिखा है। तो जब तक सतगुरु अनुभवी माप और ज्ञानी बहुत शुद्ध होना चाहिए, उपदेश जो करते हैं भगवान के रास्ते का वो बहुत बहुत शुद्ध होने चाहिए। साथ साथ में वो साधक पहले एकांतवासी और अल्प शब्दों का अनुसंधान करके अपनी स्थिति बनाए। हम 7 साल रहे तो उस समय बहुत किताब विताब नहीं पढ़ते थे, एक ही अपना जो उसी प्रकार का। जब प्रजा के लिए करना है तो बहुत शुद्ध होना पड़ता है, क्योंकि एक शास्त्र में कुछ लिखा दूसरे में कुछ लिखा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना सुमृत्यो भिन्ना श्रुतिर्मपि भिन्ना सुमृत्यर्मपि भिन्ना नाना मुनिर यस्य वचनमपि भिन्ना धर्म सत्यम निहितम गुहाया। लेकिन क्या करें कि महाजन जिस रास्ते से गए उस रास्ते से, तो महाजन है वशिष्ठ जी है राम जी है श्री कृष्ण भी संध्या करते थे। तो मैंने साधकों को बोला वो सन्यासी महाराज अच्छे हैं, तुम उनके पास भले जाना, लेकिन वो जो ये सिद्धांत बता रहे हैं वो सिद्धांत अगर होता तो वशिष्ठ महाराज तो तुम्हारे से और वो महाराज से ऊंचे थे, भगवान रामचंद्र जी भी तुम्हारे से और उन महाराज से ऊंचे अनुभव के धनी थे, इसलिए तुम उनकी इन बातों को भूल जाओ। जब रोटी खाने की जरूरत पड़ती है, नींद करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर स्नान करने की भी जरूरत है। जब बाहर से शरीर के स्नान कराते हो तो मन का स्नान है भगवान के नाम का जप। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने आकाश। चार प्रकार के मानुषी चित्त होते हैं, मानुषी मन। ये तुम्हारा बॉडी मनुष्य नहीं है, तुम्हारा मन ही मनुष्य है। बॉडी तो मनुष्य की आकृति मात्र है, शरीर का किया कुछ नहीं होता, जो मन का किया होता है। मन ही लोक लोकांतर में आता है। ऐसे मन की चार अवस्थाएं वेदांत शास्त्र ने वर्णन की। एक होता है पामर व्यक्ति, शुभ कर्म में आलस्य होता है, विषय विकारों में बड़ी प्रीत होती है, खुद तो जब तब भजन करे नहीं लेकिन दूसरा कोई करे तो उसको डंखे। जिनके शराबी लोगों जैसे विचार ज्यादा होते हैं कर्म, उनको शास्त्रों ने कहा पामर। शुभ कर्मों में आलसी, विषय विकार में बुरे कर्मों में रुचि, वो होते पामर मेंटालिटी के। ऐसे लोग मर जाते तो पेड़ पौधे होते बेचारे सड़ते छटपते रहते, अथवा तो फिर धीरे धीरे निची योनियों में भूंड सुकर कुकर आदि योनियों में गारे में पड़े रहते। ऐसा सत्संग से हमने सुना। पामरों से, पामरों में भी तीन प्रकार होते, उत्तम पामर, मध्यम पामर और कनिष्ठ पामर। पामर में भी शराबी कबाबी में भी कोई उत्तम होता है तो जरा थोड़ी बात समझ लेता है, मध्यम होता है तो थोड़ी समझता है थोड़ी हटाना, कनिष्ठ होता है तो बोले बस मैं के दुए जाचू मारा थी बदू गए। तो पामर में भी थर्ड क्लास सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास होते। ऐसे विषय होते दूसरे प्रकार के आदमी, चार प्रकार और चारों में तीन तीन प्रकार, चार तरी बाहर। चित्त के 12 प्रकार का वर्णन आता है वेदांत शास्त्र। पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। पामर में तीन, ऐसे विषयों में विषयी लोग वे होते हैं क्या आपने कोई नु बगाड़ो नहीं, आपको कोई बगाड़े नहीं, जीवो ने जीवा दो, अहीं सुख थी जीवी अने कहीं पुण्य दान सत्कर्म करिए तो भविष्य में आपड़े सुखी रहिए, ये उत्तम विषय। मध्यम विषय के भविष्य को ने देखो यहां खाओ पियो ने मजा करो। कनिष्ठ विषय है ये खाओ पियो मजा करो पर कोई बाजू वालो वधारे मजा करतो तो ने हेठो पाड़ी ने आपड़े वटती जियो, ये है कनिष्ठ विषय। ऐसे जिज्ञासु होते हैं तीन प्रकार के, उत्तम जिज्ञासु, मध्यम जिज्ञासु और कनिष्ठ जिज्ञासु। उत्तम जिज्ञासु को अगर ब्रह्मवेत्ता सदगुरु मिल जाता है तो उसको ज्ञान श्रवण मात्र से बात समझ में आएगी और फिर ध्यान में थोड़ा सा उसी में स्थिति जल्दी होने लगेगी। मध्यम वाले को बार बार सत्संग होगा और फिर बार बार प्रश्न भी उठेंगे। और कनिष्ठ जो जिज्ञासु है उसको तो है सत्संग के साथ थोड़ी उपासना थोड़ा कर्म आदि करा के योग्य बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है। जैसे उत्तम जिज्ञासु थे जनक और सदगुरु मिल गए तो काम हो गया, और कोई थे उत्तम जिज्ञासु और 40 दिन में लीला सा बापू का सानिध्य मिल गया और उनका काम हो गया। ईश्वर को जानना चाहते उसको जिज्ञासु बोलते, ईश्वर को पाना चाहते उसको जिज्ञासु बोलते। तो उन जिज्ञासु में भी कोई उत्तम होते, कोई मध्यम होते, कोई कनिष्ठ होते। जिनका साधन भजन किया हुआ है और तड़फ ज्यादा है वे उत्तम है, बुद्धिमान भी है, तड़फ भी है, साधन भजन भी किया, वो उत्तम साधक, उत्तम जिज्ञासु। दूसरे कुछ तड़फ है लेकिन कुछ मजा भी लेना है, कुछ साधन किया है तो कुछ साधन बिखेरने के धंधे भी किए, वो मध्यम। थोड़ा साधन करे, कीर्तन करन बड़ा, थोड़ा अमेरिका में फरो आ गया, थोड़ा आम तेम थोड़ो चालो रात उजागरो करी ने वाचू बीजो तो भगवान तो मुझे जोइए छे, पण ठीक छे थोड़ो आटलू तो करी लेगे ने। एटले तीव्र साधक ना कहेवाय, उत्तम उत्तम जिज्ञासु ना कहेवाय, मध्यम। अने कनिष्ठ जिज्ञासु तो श्रद्धा तो छे पण उपलो मार एटलू काम नथी करतो, तो उसको फिर थोड़ा समय लगता। ऐसे चौथे होते ज्ञानी, पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी में भी तीन प्रकार थे, एक जो उपासना में आगे बढ़कर फिर ज्ञान पाया है तो उसको ज्ञान मिल गया और जीवन मुक्त जल्दी हो जाए। विचार प्रधान ज्ञानी, उसने तत्व ज्ञान पाकर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों जिससे सत्ता मिलती वो मैं हूं उसको ठीक से जान लिया, ये उत्तम ज्ञानी, विचार प्रधान ज्ञानी। दूसरे मध्यम ज्ञानी, विचार तो किया लेकिन ध्यान के द्वारा उस विचार को बिठाने के लिए उनको उपासना आदि करनी पड़ी। और कनिष्ठ ज्ञानी, ज्ञान तो हो गया लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में भी जरा, जैसे वमन तो कर दिया, उल्टी तो कर दिया, अज्ञान की उल्टी तो कर दिया, उल्टी कर दिया लेकिन वहीं बैठा है तो मक्खियों की भनभनाहट आएगी, जे पेट में गड़बड़ हती उल्टी करी गड़बड़ तो नहीं करी पर त्या बैठा छे। ऐसे ही अज्ञान तो चला गया फिर भी अज्ञान के भोगने में कुछ आंशिक संस्कार, उन ज्ञानियों में भी फिर तीन प्रकार, उत्तम मध्यम कनिष्ठ में भी फिर तीन प्रकार। कोई विचार प्रधान ज्ञानी होते हैं, कोई ध्यान प्रधान ज्ञानी महापुरुष होते हैं, तो कोई भक्ति प्रधान ज्ञानी महापुरुष होते हैं। जो ज्ञान प्रधान ब्रह्मवेत्ता होते हैं उनके जीवन में प्रवृत्ति होगी लेकिन प्रवृत्ति में जो डिस्टर्ब विक्षेप आएगा तो समझेंगे कि ये विक्षेप या डिस्टर्ब या उथल पाथल माया में हो रहे, मुझ सच्चिदानंद का क्या विवाद। वो युद्ध के मैदान में भी अपने आत्मस्वरूप को याद के बंसी बजाएंगे, खुद तो विक्षेपों के सिर पर नाचेंगे लेकिन उनका दीदार करके भी दूसरे लोग भी खुशी हो जाएंगे। ये उत्तम विचार प्रधान ज्ञान, विचार प्रधान ज्ञान। फिर दूसरे मध्यम होते ध्यान प्रधान ज्ञान, ध्यान समाधि करते करते उन्होंने ज्ञान परिपक्व किया है तो जब भी विक्षेप आएगा तो छोड़कर फिर ध्यान में बैठ जाएंगे। चलो तीसरे होते भक्ति प्रधान ज्ञानी, कहीं विक्षेप विक्षेप आया ज्ञान तो हो गया भगवान तत्व का, लेकिन हे प्रभु वे तारु तुझने अर्पण आप सुला गया नमो भगवती वाश विवाह, भक्ति प्रधान ज्ञानी। ऐसे तीनों ज्ञानियों में भी फिर दो प्रकार होते हैं, ये होते एक होते उपकृत उपासक और दूसरे होते अकृत उपासक। जिन्होंने उपासना खूब किया और फिर ज्ञान हुआ है ऐसे होते हैं, और दूसरे होते कि गुरु की कृपा से उपदेश मिल गया और ज्ञान हो गया। तो जो कृत उपासक है उनके जीवन में खुशी, सामर्थ्य और ज्ञान तीनों साथ में चलेगा, लेकिन जिन्होंने उपासना ज्यादा नहीं की ज्ञान तो होगा लेकिन विक्षेप के समय थोड़ा हिल जाएंगे, फिर सावधानी हिल जाएंगे। फिर उनमें भी तीन प्रकार होते हैं, सात्विक आचार प्रधान, राजसी आचार प्रधान और तमस आचार प्रधान। जैसे सती अनुष्या के तीनों पुत्र ज्ञानी साक्षात्कारी, भगवान दत्तात्रेय भी साक्षात्कारी, भगवान चंद्र भी साक्षात्कारी, महात्मा चंद्र तीनों ज्ञानी थे। दत्तात्रेय सात्विक प्रधान सत्व प्रधान ज्ञानी थे और चंद्र रजस प्रधान थे, वो स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते, विलास कर विहार करते, और दुर्वासा तमस प्रधान।
हे कहां जा रहा है, इधर आ ब्राह्मण के बच्चे, इधर आ।
ओ आधा मील दूर ब्राह्मण जा रहा था, दुर्वासा ने बुलाया, इधर आ। कहां जाता? बोले महाराज मैं तप करने गया था। काय का तप किया? बोले मां काली की उपासना किया, भगवती की आराधना किया। नमः तस्यै या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै, नमः तस्यै। मां प्रकट हुई और मां ने वरदान दिया, मैंने संतान प्राप्ति की भीख मांगी, मेरी वर्षों की साधना सफल हुई। मां ने कहा मैंने पुत्र मांगा, मां ने वरदान दिया, एवं अस्तु। बोले तेरा मां का वरदान कैंसर, पुत्र पुत्र नहीं होगा, जा। हम इधर बैठे और तू मां की तपस्या करके वरदान लेके सीधा जा रहा है, इधर प्रणाम नहीं करता, तेरे बाप का राज चलता है। वो दुर्वासा, वैसे तो श्राप देने से तपस्या नाश होती, लेकिन ज्ञानी जब ज्ञान तत्व में पहुंच गया फिर नाश बास का कोई उनको भय भी नहीं होता। और उनका भाई चंद्र, वो तो विलासी जीवन जीते थे। एक बार परमात्मा का ज्ञान हो जाए फिर कर्म बंधन उनको नहीं कर सकता। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र। सुखदेव जी ज्ञानी है लेकिन बड़े त्यागी, बड़े सात्विक ज्ञान, लंगोटी का भी ठिकाना नहीं, परिग्रह नहीं, कुछ नहीं। सुखदेव जी इतने त्यागी हैं तो आत्मज्ञानी, और कृष्ण इतने भोगी, क्या सोने की द्वारका है मुकुट है, ये है वो है, बड़ी बड़ी मणियां हीरे हैं, ये है, राज कर रहे हैं द्वारका का, अपने इशारे से दूसरे तत्वों को चला भी रहे हैं, राजाओं को। जो शुक त्यागी कृष्ण भोगी, 1000 गाय दोकर 100 गायों को पिलाया जाता था, और 100 गाय दोकर 10 गायों को पिलाया जाता था, और 10 गाय दोकर 1 गाय को पिलाया जाता था। उस गाय का नाम भाई ने किशोर बच्चे का हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, शहर में पैदा हुई, शहर में जी एक आय को कहीं जा रही थी तो सामने से एक ऊंट आया, ऊंट ऐसे उठ के चला आया था, तो उसकी रस्सी बस्सी और नथड़ी वथड़ी लबड़ रही थी, तो माँ 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 ये क्या है? बोले ये है, माँ को पता नहीं क्या बोलूं, तो बोले है तो सही लेकिन इसके ये उधर नाक में क्या है? बोले ऐसों के नाक में ऐसा ही होता है, ऐसे जो लंबे लंबे होते हैं और डोक लंबी होती है उनके नाक में ऐसे ही होता है। बेटा तो समझ ले, चलो ऐसे ही, वो नाम हमको याद नहीं आ रहा है, तो आप समझ लेना कि वो गाय है, जिस गाय का कृष्ण दूध पीते थे वही गाय है। हाँ वही। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र। राजा जनक और रघु राजा, नरेंद्र थे राजा थे। वशिष्ठ कर्म निष्ठस्य, वशिष्ठ तो हे राम जी दोपहर हुआ, संध्या का समय, हे राम जी संध्या हुई है, अब प्रवचन बंद, कर्मकांड भी कर दी, तो वशिष्ठ जी कर्म में निष्ठा रखते थे, सुखदेव जी त्याग में निष्ठा रखते, श्री कृष्ण आए मौज में निष्ठा रखते, ये दोनों सबका व्यवहार बाहर से अलग अलग, लेकिन आत्मज्ञान में सब एक ही ब्रह्म स्वरूप के आनंद लेने वाले। भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप और उनकी सृष्टि करने की चेष्टा अलग, नारायण का अपना रहन सहन और शिव जी का रहन सहन अपना, तीनों को तत्व ज्ञान पूर्ण उस ब्रह्म में रमण करते हैं वे ब्रह्मवेता, जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश रमण करते हैं, उसी में वो चौथे प्रकार के महापुरुष। चार प्रकार के मनुष्य होते हैं, पामर वो तो नीच योनियों को जाते हैं, विषयी लोक लोकांतर में जाते हैं, जिज्ञासु ज्ञान हो गया तो भगवान तक पहुंच गए, नहीं तो स्वर्ग ब्रह्म लोक तक जाके फिर आते, ज्ञानी तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश को आनंद की अनुभूति होती और अपने चैतन्य सुख में मग्न रहते हैं, उसमें वो ज्ञानी महापुरुष जगे हुए रहते हैं। इसीलिए इस देश के महापुरुषों ने और ऋषियों ने कहा गुरु ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते ऐसे गुरु हमारे अंतःकरण में ज्ञान के संस्कार की सृष्टि करते, गुरु विष्णु जैसे विष्णु जी पोषण करते ऐसे हमारे चित्त में भगवत भाव का पोषण करते, गुरुदेवो महेश्वरा जैसे शिव जी परलय कर लेते हैं ऐसे हमारे चित्त में दोष पाप और भय को ज्ञान की निगाहों से गुरुदेव परलय कर देते, तो हमारे गुरु शिव भी है। फिर भी ऋषि को संतोष नहीं हुआ कि ब्रह्मा की नाई सद्गुण उत्पन्न करते, विष्णु की नाई हमारे संस्कारों को पोषते हैं और महेश की नाई हमारे भय शोक चिंता को भस्म करते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा तो कहा, लेकिन और एक कदम आगे की सच्चाई बता दी, गुरु साक्षात परब्रह्म जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रमण करते उसी परब्रह्म स्वरूप हमारे गुरु को नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम लोग रोज गाते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो ऐसे गुरुओं के ज्ञान के बिना शास्त्र कहता है कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्रवे यो गृह्णाति नराधम मन्मंत्र सहस्त्रेषु निष्कृति तैव निष्कृति ते नैव जायते। गुरु के निकट से दीक्षित न होकर जो व्यक्ति ग्रंथ आदि को देखकर मंत्र ग्रहण करता है उस नरा अधम को सहस्त्र मन्वंतरों में भी निष्कृति की प्राप्ति नहीं होती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जैसे जला दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है, ऐसे ब्रह्म का प्रकाश जिनको हुआ है वे ही महापुरुष हमें ब्रह्म का प्रकाश करा सकते। गुरु बिना भवन निधि तरह ही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम हो वही। नाम जपत मंगल दिशा दशहुं, तुलसीदास ने कहा कि भगवान नाम जपते ही दशों दिशाओं में मंगल होता है। नाम उच्चारण से चित्त तो प्रसन्न होता है, जप योग से, जप एक प्रकार का स्वतंत्र योग है, दूसरे योग आम आदमी न कर सके तो जप योग सब कोई कर सकते, जप योग स्वतंत्र योग है। जप योग से आपके अंदर की चेतना जागृत होती है, नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की एकता, ये जप विज्ञान की वैज्ञानिक व्यवस्था है। जप की महिमा सभी धर्मों में है, समूची उसकी व्यवस्था है, चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नाम जप की ईसाइतों ने इस्लाम ने हिंदू धर्म ने और पारसी आदि धर्मों ने जप की महिमा गाई। जप में एक होता है स्मरण, दूसरा होता है स्थापन, तीसरा होता है उपलब्धि की दृष्टि, चौथा होता है विज्ञान स्तंभ, पांचवा होता है योग दर्शन, छठा होता है जप से सिद्धि की प्राप्ति लक्ष्य। सर जॉन वुड्स ने एक प्रयोग किया कि मंत्र में गुप्त शक्ति और उसके अर्थ की शक्ति होती है, जो अभ्यास कर्म को दिव्य शक्ति अभ्यास करने वाले को दिव्य शक्तियों का पुंज बना देती है। ये अंग्रेज का अनुभव है, सर जॉन ब्रूफ का अनुभव है। अन्य मंत्र साधनाओं में कर्मकांड की आवश्यकता पड़ती है, विधि विधान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तत्व को जो पहुंचे हुए ऐसे महापुरुष का गुरु मंत्र मिल गया तो और कोई कर्मकांड की विधि की जरूरत नहीं पड़ती है। और लोगों को तो तीर्थों में जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन भक्त जहां सच्चे सद्गुरु का मंत्र लेकर जप करता है वो भूमि तीर्थ होने लगती है। अब कौन कहेगा कि तापी का तट ये तीर्थ का खबर नहीं दे रहा है, गमेटला तीर्थों में फरिया बचे आओ वर्णा ने फेरा फरो टाढक क्या आवे छे तमे जोई लो ने गणी लो ने बीजू शू मजा क्या आवे टाढक क्या आवे छे आनंद क्या आवे छे। तो जिनको सद्गुरु के द्वारा मंत्र मिल जाता है उनको दूसरे कर्म कांड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाप नाश के लिए अन्य प्रायश्चित उन्हें कहन करने नहीं पड़ते हैं। जिसके पास गुरु मंत्र है उसको पाप नाश के लिए और प्रायश्चित करने नहीं पड़ते। तीर्थ बोलते हम किसको पवित्र करें, तो हम कोई पवित्र करने वाला है, भगवान का जप करता है, गुरु मंत्र का जप करता है। प्रायश्चित कहते हैं कि प्रायश्चित ही संबंधी कर्म हम किसको बताएं, ये तो हमारे सारे कर्मों के प्रायश्चित का भी प्रायश्चित कर देने वाला भगवान नाम का आश्रय ले बैठा है। ये बहुत ऊंची चीज है ना, हम ज्यादा विधि विधान से दें तो हमारे पास उतना समय नहीं, इसलिए जो आए फटाक से देते हैं, क्योंकि बिगाड़ तेजी से हो रहा है तो सुधार भी हमको तेजी से करना चाहिए। तो अब क्या अधिकारी अनधिकारी खोजे, आजा ले जा आजा ले जा। तो आजा ले जा में एक तो फायदा है कि ग्राहक की खूब हो गई होलसेल में, लेकिन एक नुकसान है कि लोग उसकी कदर नहीं करते। चलो मंत्र मिल गया, साइज में मिल गया, जैसा हमने परिश्रम किया और फिर गुरु ने हमको ये कहा, और लोगों ने घनश्याम ओझा की सरकार थी, ये लोग जानते हैं, गुजरात में घनश्याम ओझा सरकार आई थी। उस समय एक एमएलए मेरे पास आया था, करशन भाई चौधरी, तो उसके पास साथ साथ में एक आया कि बापूजी डीसा में आप रहे थे, हमारा घर तोड़ रहा है, कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, 18 परिवार के हैं, हमारा बुलडोजर घूम जाएंगे। तो मैं क्या भाई क्या करना चाहिए, तुम एमएलए बताओ। बोले बापू कलेक्टर ने ऑर्डर किया तो फिर रेवेन्यू मंत्री अगर उनको फोन बोन करे तो फिर कुछ हो सकता है। तो मैं क्या रेवेन्यू मंत्री को तो हम नहीं जानते, तुम भी तो हो नेता, कुछ करो। बोले बापू रेवेन्यू खाता का प्रभाव पड़ेगा। तो वो महाराज था जो भी, उसने कहा कि तुम क्यों नहीं बन जाता रेवेन्यू मिनिस्टर। बोले घनश्याम ओझा ने तो सरकार बना ली, हमको तो मिनिस्टर। महाराज ने कहा अच्छा जाओ गांधीनगर तुम जाओ, मिनिस्टर तुमको बना ले। वो करशन भाई चौधरी गांधीनगर गए और घनश्याम ओझा ने कहा अरे आपको मिनिस्टर बनाते, और उस मिनिस्टर बनकर पहला काम ये किया गया, वो डीसा में जो भाई बिचारे गरीब थे उनका मकान रहे। जब आप मंत्र जाप करके उस उत्तम ब्रह्म में रहते तो आपका एक स्फूर्ण फिर वातावरण में ऐसा कर लेता, ऐसा आपके अंदर परमात्मा शक्ति है, परमात्मा रस है। लेकिन वो महापुरुष जैसे डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता, वकील अपना केस नहीं लड़ता, ऐसे वे सतपुरुष अपने लिए इन चीजों का उपयोग नहीं, लोहे सो लोहा काटो सोना क्यों खर्च करना। भाई तू वकील छे तू जरा जोई लेजे, भाई तू आम छे तू जरा जोई लेजे, कर लेजे बस चालिया करे। ये शाम गुरु कृपा नास्ति अद्दो गच्छन्ति पार्वती। भगवान शिव कहते विद्या धनम बलम चैव तेषां भाग्य निरर्थकम्, ये शाम गुरु कृपा नास्ति अद्दो गच्छन्ति पार्वती। उनकी विद्या उनका धन उनका बल और उनका भाग्य सब निरर्थक हो जाता है जिनके जीवन में सद्गुरु की कृपा प्रसादी नहीं है। सुबह भी बताया था कि राम की राशि और रावण की राशि एक ही थी। राम की राशि पर राम पर गुरु की कृपा थी और रावण पर अहम की कृपा थी। सुरपंखा और सबरी दोनों की राशि एक थी और दोनों भारत इधर ही। सुरपंखा का कैसा जीवन और सबरी का कैसा। कंस की और कृष्ण की राशि भी एक ही थी। अरे क्या तो आ राशिनों से नहीं, राशि कैसी भी हो जब सदगुरु मिलता है तो उसमें चमक आ जाती है और अहम मिलता है तो पतन आ जाता है। मैंने सुनी एक कहानी कि एक कठियारा लकड़ों का भारा इकट्ठा करके सूर्य अस्त हो रहा था, आवाज मारता है कि है कोई भगवान का अल्लाह का प्यारा। चहु और आवाज मारा तो एक रेशमी कपड़े से सजा धजा चमकीला जवान घोड़े को भगाते हुए आया, घोड़े से उतरा और उसने कठियारे को भाड़ा चढ़वा दिया। भाड़ा चढ़वाते चढ़वाते उस रेशमी वस्त्रधारी चमकीले युवक पूछा कि कितने पैसे कमाता है। बोले मिल जाता है पेट भर को, चार से छह आने तक मिल जाते। उस जमाने में छह आने में छह आदमी खा ले। उसको पता नहीं था कि राजा साहब युवराज खुद हैं। युवराज आगे गया और अपने मंत्रियों को बोला जो जंगल में सैर करने आया कि इसको अपने घर मत जाने देना, रास्ता इसका रोक कर राज दरबार में ले आना, मेरा परिचय मत देना। उसका सब जगह से रास्ता रोकते रोकते सीधा राज दरबार में पहुंचा दिया। देखा तो अरे इसी रेशमी कपड़ी वाले कपड़े वालों ने तो अभी तो मेरे को जंगल में भाड़ा उठवाया, क्या ये ही जहां पना महमूद साहब है। महमूद ने पूछवाया कि पूछो कितने में लकड़ियां देगा। मंत्री ने कहा लकड़ियां कितने में देगा। बोले अब ये नहीं बिकेगी, अब नहीं बेचूंगा। बोले क्यों। बोले जहां पना का हाथ लगा है। महमूद ने कहा हमें चाहिए, कितने में दोगे। बोले जहां पना, अब इसका मूल्य मैं नहीं बता सकता। बोले तूने तो कहा था चार छह आने में बिकती है, तो ले ले छह आने आठ आने। बोले नहीं नहीं अब नहीं बेचनी, अब तो ये अशरपियों के मूल्य पे दे सकता हूं। बोले क्यों। बोले जहां पना का हाथ जो लगा है, महमूद सम्राट का हाथ लगाए इन लकड़ियों को। जब एक भोगी शराबी कबाबी सम्राट भी भारे को हाथ लगा देता है तो लकड़ी सोने के मूल्य से बिकती है। तो सद्गुरु के हृदय से तुम्हारे कान द्वारा मंत्र आए तो तुम्हारा अंतःकरण भाई। कोई लड़का आईएएस हो जाता है तो इतनी बड़ी बात नहीं, मानना नहीं रखता। लेकिन जब उसको पोस्टिंग हो जाती है और कलेक्टर बन जाता है तो उसकी सिग्नेचर में पूछो, कलेक्टर बैठे हैं कमिश्नर बैठे उनकी सिग्नेचर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैं तो डिस्ट्रिक्ट तक का प्रभाव हो जाता है। कस्टम में किसी जितने एरिया के हैं उतनी एरिया तक उनका प्रभाव हो जाता है साइन। और वही व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पोस्ट पर है और साइन करते हैं तो पूरे राष्ट्र में उनकी साइन की असर होती है, वैल्यू होती है। ऐसे जो सारे तमाम ब्रह्मांडों में व्याप्त पर ब्रह्म परमात्मा है उसमें जो ब्रह्मवेता जगे हैं तो वो ब्रह्मवेता के द्वारा गुरु मंत्र मिलना मतलब तुम्हारे अंतःकरण पर ब्रह्मवेता का सिग्नेचर पूरे ब्रह्मांड में माना रखता है। जैसे पुण्य और पाप व्यक्ति के मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे ही गुरु मंत्र जाप किए हुए साधक की, गुरु भक्ति किए हुए साधक की, वो पुण्याई उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसको मुक्ति नहीं मिली। ऐसा आप लोगों का अनुभव भी होगा, अगर मंत्र ले लिया और किसी दुर्भाग्य से एक दिन दो दिन चार दिन नहीं जपा कुसंगति मिल गई, कोई ऐसा वैसा मिल गया, निंदक मिल गया, कोई पापी मिल गया और मंत्र छूट गया, लेकिन पहले कुछ समय गुरु का मंत्र लिया और जपा है तो पहले की कमाई गुरु मंत्र की बार बार तुमको उधर ले जाती है और फिर से आके मत्था टेक के और अपनी गाड़ी पट्टे पे चढ़ा देती है। सुबह का भूला शाम घर आए भूला ना कहलाए, ऐसे बार बार गुरु का मंत्र गुरु की कृपा आपकी ही रॉन्ग साइड गई हुई गाड़ी अथवा पट्टी से उतरी हुई गाड़ी को फिर वो चढ़ा देती है अंतर प्रेरणा करके। नहीं तो एक तरफ कलयुग खींचता, दूसरे तरफ जुआनी के विकार खींचते, तीसरे तरफ समाज खींचता, चौथे तरफ निंदकों की अफवाहें खींचती है, पांचवें तरफ आदमी व्यस्त है बिजी है वो खींचता है। फिर भी ये होते हुए भी जब गुरु का मंत्र और गुरु की कृपा मिली है तो वो कृपा भी इन सब खिंचाओ के बावजूद भी तुम्हें खींच खींच के गुरु के द्वार पर ले आती है, गुरु के साधना में ले आती है। बिल्कुल पक्की बात है। जब का पुण्य दूसरे पुण्यों को ले आता है, ऐसे करते करते साधक चढ़ते उतरते पार हो जाता है। तो ओम बदाज अक्षरों नो माई बाप छे, अ उम ओम ना आकार थी स्थूल जगत, उकार थी सूक्ष्म जगत, ने मकार थी कारण जगत नु गुड तत्व जागृत थाय। तुलसीदास जी कहू के मंत्र में अक्षरों तो नाना होय छे पण जब पथी न फल बहु परिणाम बहु ऊंचा होय छे, अने ए ज कारण छे के नानकड़ा मंत्र श्रद्धा सहित जे लोकोए जप्या तो मोटी मोटी सिद्धियों हमने मिली, मोटी मोटी प्रसिद्धियों हमने मिली, मोटी मोटी सफलता बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिली। छोटा सा मंत्र है लेकिन विधिवत सकाम भाव से विधिवत जपे अथवा निष्काम भाव से सहज में जपे तो उन्हें बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियां हुई मिली, शारीरिक स्वास्थ्य मिला, मानसिक प्रसन्नता मिली, एकाग्रता में मदद मिली, सत्तो गुण बढ़ा, बुद्धि की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ, बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में मत्था टेक कर अपना भाग्य बनाने लगे। ऐसे मंत्र जापने वाले पुरुषों को देखा सुना गया और महा अपराधी व्यक्ति भी मंत्र जाप से बदल गए, सुधर गए, महापुरुष हो गए, बाल्या में से वाल्मीकि हो गए। तो मंत्र जाप सभी लोगों को उन्नत करता है, चाहे वो अर्थार्थी हो, चाहे आर्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे ज्ञानी हो। अर्थार्थी धन की इच्छा वाला उसको भी मंत्र मदद करता है, आहार्त हो बीमारी है पीड़ा है उसमें भी मंत्र काम करता है, जिज्ञासु है भगवान को पाना जानना चाहता है उसको भी मंत्र, और ज्ञानी का भी सहज स्वभाव में मंत्र उसके हृदय में स्फुरित होता रहता है। प्रोफेसर तीर्थराम गणित में एमए हुए, डबल एमए हुए, फिर देखा कि खाना कमाना आयुष्य से बर्बाद हो रहे चले गए हिमालय। उनकी सेवा में सरदार पूरण सिंह गया। एक रात को पूरण सिंह घबराया कि मंत्र जाप की ध्वनि रात्रि को अंधेरे में कहां है। बाहर निकला कुटिया से देखा तो टिमटिमाते तारे और ग्लेशियर, बस बारीकी से देखा कि आवाज कहां से आता है। पता चला कि राम तीर्थराम की कुटिया से। अंदर गए तो तीर्थराम सोए हैं, लेकिन दिन भर जो जप करते थे नींद में उनका वैसी ध्वनि निकलती। पूरण सिंह घबराया, तीर्थराम को जगाया, ओ प्राओ तेनु कुछ हो गया है। क्या होया है सारी बात बता दे। तो तीर्थराम नाचने लगे कि बस अब हमारा काम हो गया, आज तक तो मंत्र जपते थे, अब नींद में भी मंत्र अपने आप स्फुरित होता है तो हमारा काम हो गया। अब हम तीर्थ राम नहीं, हम तो राम तीर्थ हो गए। हम जहां जाएंगे वो भूमि तीर्थ हो जाएगी। तो मंत्र जपते जपते जिनका वैखरी में से मध्यमा, मध्यमा से पशंती और पशंती से परामे मंत्र पहुंचता है, तो उनके मंत्र की सिद्धि ऐसी उनको ऊंचाई दे देती है कि वे पुरुष जहां जाते हैं वो जगह तीर्थ में बदल जाती है। जैन धर्म के लोगों ने ऐसे संतों को तीर्थंकर कहा। उन्नीसवां तीर्थंकर मल्लयनाथ की बात आती है जैन धर्म में। वो राजकुमारी मलिका थी, जैसी गुणवान थी ऐसी सौंदर्यवान भी थी, खूबसूरत थी। उसका सौंदर्य देखकर कई राजकुमार और कई राजे भी दीवाने हो गए थे, लेकिन मल्लयनाथ, भूतपूर्व मल्लिका राजकुमारी, विचारों की भी सुंदर थी, उत्तम विचार थे। भोग में अपना जीवन बर्बाद करके नरकों में जाने की बजाय योग में और जप में अपना जीवन आबाद करके मुक्त होने में उसका विश्वास था। तो किसी को भी वैजयंती माला पहनाने में वो उत्साहित नहीं हुई। आखिर अच्छे अच्छे राजा और राजकुमारों को विकार ने अंधा बना दिया। उन्होंने एक साथ मिलकर मल्ल्य कुमारी के पिता के राज्य को घेर लिया और युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करके राजकुमारी जीत लेंगे, उसके पिता को मार कर ले जाएंगे, राज्य के सैनिकों को मार कर ले जाएंगे। कुमारी मल्ल्य का ने देखा कि मेरे इस सौंदर्य के दीवानों ने काम हमेशा निर्लज्ज होता है और अंधा भी हो जाता है, मेरे पिता को सहन करना पड़ेगा। शांत बैठी, मंत्र जाप किया, चित्त में प्रेरणा मिली, और अपने पिता को अपने पक्ष में करकर उन राजाओं को और राजकुमारों को आमंत्रित कर दिया कि आप मेरे सौंदर्य के इच्छुक हैं तो मैं अपना सौंदर्य आपको अर्पण करने को राजी हूं। ऐसा नहीं कहा मैं शादी करूंगी, मेरा आपको सौंदर्य अर्पण करने को मैं तैयार हूं। उन्होंने तुरंत अपना जश्न मनाए, अपनी सेनाएं थाम ली। मल्ल्य कुमारी ने तारीख भेज दी, सारे आए बंदे, उनके रहन बैठने की व्यवस्था की किसी सुंदर सुहावने हाल में। हाल में जब राजे और राजकुमार बैठे तो देखा कि मल्ल्य कुमारी चुपचाप इतना दूर बैठी है, कितनी सुंदर लगती, उसके सौंदर्य को पी रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि ये मल्ल्य कुमारी की प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा थी कि मानो वो मान रहे थे कि बस आबे हुक खड़ी हमारे सामने देख रही, कुछ बोलती नहीं। इतने में मल्ल्य कुमारी आई तो दोनों तरफ देखने लगे कि ये सच्ची कि वो सच्ची। मल्ल्य कुमारी ने क्या करा कि उस हॉल के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी। उनको और अच्छा लगा कि हमें मिले जाएगा इसका सौंदर्य। वो जो प्रतिमा बनाई थी उस प्रतिमा का ढक्कन खोल दिया उसने, तो ऐसी सड़न की दुर्गंध आई कि नाक दबोच के सब भाग भागने लगे। मल्ल्य कुमारी ने कहा कि जिस भोजन करने से मेरा ये सौंदर्य बनाया है, जो अन्न सब्जी दही छाछ दूध फल फ्रूट जो भी हम खाते हैं, वही एक दिन का इसमें डाल दिया है। उसकी सड़न की दुर्गंध तुमसे सहन नहीं होती तो उससे बने हुए इस शरीर में तुम आसक्ति करते हो, इससे तो उसके परमात्मा के उस ईश्वर के नाम का आश्रय लेते तो तुम्हारा असली सौंदर्य निखरता। ये सड़न के सौंदर्य के पीछे कब तक लगोगे? मल्य कुमारी की हृदय स्पर्शी बात को सुनकर कई राजकुमार तो विरक्त हो गए, भिक्षुक बन गए, और कई राजा भी निवृत्त हो गए, और वो मल्य कुमारी अपने जीवन को कामियों के हवाले करने के बजाय अपने जीवन को मंत्र भगवान के हवाले करके ऐसी लगी कि जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर मल्यनाथ के नाम से अभी भी पूजी जाती। नजर बदली, केवल दृष्टि बदली, इधर उधर का चिंतन करे तो मंत्र का आश्रय ले और फिर जपे करे। राजे महाराजे जापक के चरणों में अपना मत्था टेकते, विद्वान बुद्धिमान कवि ये वो मंत्र जिनका सिद्ध हो गया उन संत पुरुषों के चरणों को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास ने कहा कि राम नाम का धन खुले आम सबको मिलता है, फिर भी तिजोरी के धन वालों की खुशामत क्यों करते है समझ में नहीं आता। फ्रांस निवासी ऑनार्ड नाम का एक जिज्ञासु था। ऑनार्ड ने देखा कि फ्रांस में मेरी जिंदगी ऐसी तबाह हो रही है, कोई जिसने अपने सौल को जाना हो, जीवन के फल को पाया हो, ऐसा कोई पुरुष मिल जाए। फ्रांस निवासी ऑनार्ड अपने फ्रांस में तो ऐसे पुरुष को नहीं पा सके कि जो कोई बुद्ध पुरुष हो। खबर मिलते मिलते किसी ने कहा कि एक भारत में एक महिला है जिसका अंतःकरण पूर्ण विकसित हुआ है और जिन्होंने अपने आत्मा वैभव को पाया है। बोले कौन महाराज है, कौन आचार्य? बोले आचार्य महाराज नहीं, एक महिला है। ऑनार्ड के चित्त में ये भ्रांति थी कि कोई बड़े बड़े जैसे पैगंबर हुए, कोई पीर हुए, तो धर्म के बड़े बड़े आचार्य पुरुष ही हुए, कोई पंथ स्त्री ने आज तक नहीं चलाया। धर्म का संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय किसी स्त्री का स्थापित नहीं है। तो ये आनंदमय माँ ये पूरी विकसित है, सुना अनसुना कर दिया। ऑनर्ड जब भारत के योगियों को खोजने के लिए भारत में घूमा तो घूमते घामते शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश वाले बाबा जी के पास गए। डॉक्टर शिवानंद से उन्होंने पूछा कि ऐसा कोई महापुरुष भारत में मिल जाएगा कि जिन्होंने अपने चित्त को अपनी बुद्धि को पूरा विकसित कर दिया हो, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित, जो वेदांत के ज्ञान की पराकाष्ठा पे अनुभूति की आखिरी शिखर पर पहुंचे हों, विराजमान हों। शिवानंद ने कहा हाँ हाँ एक है। शिवानंद प्रसिद्ध भी थे, प्रवचन भी करते, लेखक भी थे, MBBS पढ़े लिखे डॉक्टर में से साधु बने थे। शिवाजी ने ये थोड़े शिवानंद ने ये नहीं कहा कि मैं पूर्ण विकसित हूं। शिवानंद ने कहा कि आनंदमय मां पूर्ण विकसित है, उन्हें सत्य की प्राप्ति हो गई, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो गई। ऑनार्ड दंग रह गया कि मेरे देश में फ्रांस में भी आनंदमय मां के लिए ही मेरे को समय बात मिली और यहां भी शिवानंद जी का फिर व्याख्या करना और समझाने का ढंग, और संत भी अपनी ऊंचाई वाले थे। ऑनार्ड को अब हिमालय के जोगियों खोजने की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। ऋषिकेश से हिमालय जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, ऋषिकेश से कनखल जाने का प्रोग्राम बना लिया उसने। कॉनार्ड ने जाकर देखा, जिसने साधना काल में जब करते करते चांद्रायण व्रत किए थे, एकम को एक कोर, दूज को दूसरा कोर, तीज को तीन कोर, कोर इतले ग्रास, पूनम आए तो 15 ग्रास, फिर पूनम के बाद 14, 13, 12, ऐसे चांद्रायण व्रत भी किए थे। और मंत्र जाप करते करते एक चावल रखा, दूसरा चावल, ऐसे चावलों पर जप करते करते जिन्होंने अपना भोजन किया, कभी कभी तो जरा सा एक कोर खाके रहे और जप करते रहे, कभी अखंड जप करते रहे, शाम को रात्रि को उपवास कर लिया, जप करते करते सो गए। तुम लोग सर्दियों में ऐसा नहीं करना रात्रि उपवास ज्यादा, और सुहागिनी स्त्री तो ज्यादा भूखा मारी ना करे, तपस्वी नहीं हो तो कर सकती। संध्या को बैठे जब ध्यान करते फिर किसी से न मिले, और दूसरे दिन सुबह को भी ध्यान भजन से ही अपना दिन आरंभ करे, तो नींद के 2-4 घंटे पहले के और नींद से जगने के 2-3 घंटे बाद वाले हैं, अगर संभल जाते हैं तो नींद भी थोड़े दिनों में योग शक्ति मांत्रिक सिद्धि में मदद करने वाली हो जाती। हम पहले ऐसे ही करते थे, शाम को सूर्यास्त हुआ बस मिलना जुलना या इधर उधर जाना, ध्यान में बैठे, नींद आई तो रात को झोंके खा ली, सो भी गए, सुबह फिर ध्यान में बैठे, तो हमको बहुत लाभ हुआ। हमारे गुरुदेव भी जहां रहते थे तो गुफा में अपना बैठे, ध्यान में बैठे रहे, शाम हो गई, दोपहर चली गई, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरे दिन सुबह हो गया, दूसरे दिन की दोपहर हो गई, सेवक ने रखा था बाजरी की रोटी और तांदलिये की या पालक की भाजी, देखा कि कल की ऐसी ऐसी बड़ी, ऐसा समय बीत जाता था हमारे गुरुजी का। तो जप करते करते, पहले जप वैखरी से होता है, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ये वैखरी का जप, बाद में फिर मध्यमा में आता है, बाहर का शोरगुल वाला जप धीरे धीरे फिर मानसिक हो जाता मध्यमा में, मध्यमा का जप फिर वशंती में आता है, तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, और पसंदी का जब धीरे धीरे परा में आ जाता है, जब के अर्थ में मन शांत होने लगे, आनंदित होने लगे, जैसे कल प्रयोग करा था ना, ओम 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 ओम, फिर जोर से हंसे थे, तो ये वैखरी थे, इन बड़ा फायदा लगा, आज भी थोड़ा करके देख लो, नए लोग हैं तो ओम 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 हम 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 आनंद हम 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 ओम आनंद सपना संसार स्वप्ना चैतन्य अपना फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा हरि ओम 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 मजा आवे बापो मजा आवे छो खरेखर बहुत लाभ बहुत। मध्यमा के बाद पश्चंति के बाद मंत्र की स्थिति होती है परा, वो परा की स्थिति में पहुंची हुई है आनंदमय महात, तो ऐसे पुरुषों की पहचान होती कि उनके नजीक जाए तो आनंद आने लगे, ऐसे पुरुष जब बोले तो मानो मधु टपक रहा है, वो देखें तो मानो अमृत बरस रहा है, ये महापुरुषों की सिद्ध पुरुषों की पहचान। तो फ्रांस प्रवासी अनर्ड जाकर बैठा, दिखने में तो एक महिला थी, लेकिन उसका मंत्र जाप और एकाग्रता ने बुद्धि को उतना ऊंचा उठा दिया था कि खास पढ़ी लिखी नहीं थी फिर भी बोलती थी तो वेदवाणी आ जाती। जो भी टूटी फूटी छोटी मोटी भाषा में बोले लेकिन रहस्य रहस्य ही रहस्य आ गए। गोपीनाथ कविराज नाम के उस समय के कवि बड़े अच्छे लेखक थे, गीता प्रेस गोरखपुर के मैगजीन में उनके लेख आते थे, वो भी आनंदमयी मां से बड़े प्रभावित थे। वो इतने प्रसिद्ध लेखक और भजनानंदी व्यक्ति थे, दो संतों से बड़े प्रभावित हुए। एक हुए थे विशुद्धानंद योगी से और दूसरे प्रभावित हुए थे आनंदमयी मां से, मन उनके शिष्य जैसे ही हो गए थे। विशुद्धानंद योगी ने भी मंत्र जाप करके सौर्य उपासना की थी, सूर्य विज्ञान जान लिया था। मंत्र उपासना एक ऊर्जा पैदा कर देती योग्यता, फिर आप कहीं भी लगाओ किसी में भी लगाओ, जैसे विद्युत के छेड़े हैं आप किसी में भी लगा दो, लेथ में लगा दो, पंपिंग स्टेशन में लगा दो, माइक में लगा दो, जहां भी लगा दो। ऐसे ही जब करते करते जो एकाग्रता और योग्यता आती वो किधर भी लगा दो। अगर उसी योग्यता को, योग्यता जहां से आती है उस आत्मा को जानने में लगा लो तो तत्व ज्ञान होकर मुक्ति का अनुभव हो जाएगा, नहीं तो फिर उसमें तो आनंदमयी मां ने ऐसी योग्यता निखारी थी। विशुद्धानंद योगी ने भी अपनी योग्यता ऐसी निखारी कि कोई भी मंत्र जपे तो सिद्ध, एक बार इष्ट मंत्र सिद्ध हो जाए और एकाग्रता और संयम। मंत्र सिद्धि में चार चीजें चाहिए, एक तो शब्द की रचना, दूसरी जापक की श्रद्धा, तीसरी बात जापक का एकाग्रता और चौथी बात जापक का संयम। श्रद्धा तो है लेकिन जो आया खा लिया, जैसा आया कर लिया तो फिर इतना मजा नहीं आएगा। संयम, श्रद्धा, एकाग्रता और मंत्र उसके अनुरूप, तो मंत्र सिद्ध होता है। फिर तो विशुद्धानंद ने भी मंत्र सिद्ध कर रखे थे, वे भी ऊंचे संत थे। एक बार गोपीनाथ कविराज ने माला टूट गई तो वो गुरु महाराज को दे दिया, महाराज ये रेशम का धागा है और ये दाने हैं, मैं चाहता हूं कि आप जैसे सतपुरुष के हाथ से मेरा हो जाए। गोपीनाथ कविराज भी ऊंचे व्यक्ति थे, महाराज ने कहा ये माला मेरे से गुथवाना चाहता है, अच्छा डाल दे इसमें। गौमुखी में धागा डाल दिया और माला डाल दाने डाल दिए। महाराज ने गौमुखी को तीन चक्कर खिलाए और दे दी, बोले ले ले माला, गुथ गई। गोपीनाथ कविराज ने लिखा कि मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो धागा और दाने हैं गौमुखी में डाले और महाराज ने तीन चक्कर किए और एक एक दाना कैसे मढ़ा गया और कैसे गांठ लग गई, मैं दंग रह गया। महाराज ने कहा जो ज्यादा समय में काम होता है वो थोड़े समय में कर लिया, मैंने सूर्य विज्ञान को साधा है। जैसे सूर्य गेहूं ज्वार मटर मूंग पैदा कर देता है दो तीन महीने में, और कभी कभी किसी योगी ने पूर्व काल में दिन को बोया और रात को काटा, ऐसा भी होता है। ऐसे ये तीन महीने का 90 दिन का काम एक दिन में हो सकता है, तो 90 मिनट का काम एक मिनट में क्यों नहीं हो सकता है।